नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपये की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें न विचारधारा की चिंता रहती है और न ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।